ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद्भागवतम का नौवां स्कंद अध्याय 10 और 11 जब भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं का वर्णन करते हुए संक्षिप्त रामायण, जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज के पास 7 दिन भी बाकी नहीं, वह 9वें स्कंद में वो प्रवेश कर चुके हैं। भागवतम 12 स्कंद का होता है, 9वें स्कंद में यानी कि 2/3 भाग समय चला गया, तो 7 दिन का 2/3 कितना होता है, करीबन 5 दिन चले गए। अब 2 दिन बाकी है, अब 2 दिन में भागवत कथा में सारा रामायण यदि कहने जा रहे क्या हो सकता है, लेकिन रामायण का महत्व 2 दिन में पता चल जाता है, 2 दिन में नहीं 2 पल में भी पता चल जाता है। रहस्य क्या है, ज्यादातर लोग रहस्य जानते नहीं, कथाएं सुन सुनते ही है। लेकिन यहां सर्वप्रथम मैं संक्षिप्त में कह जाऊंगा कि क्या क्या चर्चा हो गई। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र जी के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया, यानी कि वो गुरुतुल्य होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं तितं ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शन। तत्वदर्शी यानी कि तत्व से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यकलापों सुनना चाहिए, क्या सत्य है, क्या सत्य है इसके पीछे, जो वो नहीं सुनता तो सुनी सुनी बेकार हो जाए। इसीलिए परीक्षित महाराज को कहते हैं कि चूंकि आप सीतापति रामचंद्र जी के विषय में बारम्बार सुन चुके हैं, अतएव मैं संक्षेप में ही कार्यकलापों का वर्णन करूंगा, कृपया सुने। यानी कि हमारे जीवन में क्या लागू होता है, हम कितनी कथा सुन चुके हैं, रामायण का पाठ कितने दिनों में होता है, रामायण मंडली हफ्ते हफ्ते में करती है, लेकिन ये मंडली के पीछे कोई और ही मकसद होता है। क्या तत्व से सुनते हैं, समझते हैं कि सिर्फ पाठ करना एक पुण्य कार्य समझते हैं, लेकिन पुण्य में भी पाप करते हैं तो क्या फायदा होगा। तो तत्व की बात बताते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उस तरह अपहरण किया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ असुरक्षित भेड़ों को पकड़ लेता है। तब रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो को अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह इन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण ऐसे स्त्री अनुरक्त पुरुष की दशा बताइए। स्त्री अनुरक्ति क्या है, विषयाशक्ति देहात्मभान इत्यादि अनुरक्ति यह स्त्री के कारण पैदा होती है। स्त्री अनुरक्ति और ऐसी स्त्री के विरह में हम घूमते फिरते हैं तो क्या फायदा, स्त्री कोई विषय का पुतला है क्या, उसमें आत्मा है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी हमें ये बताते हैं कि वो भी जैसे हमारे जैसे स्त्री अनुरक्त पुरुष लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को कैसे समझना चाहिए, जाना भी कर्तव्य है। भगवान का बंधारण देखो और हमारा बंधारण देखो। भगवान के बंधारण में पूर्णतया सब चीत और आनंद गुण जो आध्यात्मिक या दैविक गुण कहलाते हैं वो होता है। यानी कि इनको हमारा जैसा जो बंधारण है सत्व रज और तमो का, तो सत्व गुण रजोगुण या तमोगुण का बंधारण द्वारा हमें ये देह प्राप्त हुआ है। ऐसा देह रामचंद्र जी का नहीं था, ऐसा मन भी रामचंद्र जी का नहीं था। तो रामचंद्र जी की आत्मा पूर्ण तरह से पवित्र ही होती है। इनके सारे कार्यकलाप हमारे जैसे दिखाई देते हैं लेकिन पूर्ण पवित्र और संपूर्ण जानकारी वाले होते हैं, और हरेक कार्यकलापों में उन्हें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। चाहे सीता से बिछोड़ने का हो या सीता को घर से निकाल देना, या सीता धरती में समा गई है तो हमारे जैसे जूठे आंसू भी बहा सकते हैं, लेकिन इसमें विरह जो है तो आध्यात्मिक विरह हमेशा आनंद की पराकाष्ठा, हृदय के आनंद की पराकाष्ठा के कारण होता है। जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में हमें मिलता है ऐसा विरह किसी ने करके नहीं बताया है, न तो मीरा ने करके बताया है न तो किसी ने। आत्मा की जो अवस्था है सच्चिदानंद वो दिव्य होती है। तो हम भगवान के अंश होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या इसे पता नहीं चलता है। हमें यह पता चलना चाहिए कि हम फालतू गिरी फालतू जीवन बिताए नहीं, हम मनुष्य मनु भगवान की संतान है, भगवान का अंश हमारा सच्चा स्वरूप होता है। ममई वांशो जीवलोके जीव दूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि हरे जीव मेरा अंश है, लेकिन मन सहित छह इंद्रियां से खींचतान करते सिर्फ अज्ञानता में डूबी होती है। यानी कि क्या संदेश, हमें हमारी इंद्रिय पर काबू जमाना चाहिए, जिसके द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल में रख सकें। क्योंकि आत्मा की स्थिति, आत्मा के कर्तव्य को जानने के लिए ये मन और इंद्रियां यदि कंट्रोल में नहीं है तो वो नहीं पहुंचने देंगे। तो यहां ये भी बताया गया है कि भगवान तो क्या भगवान की शक्ति जो जिसमें कोई भेद नहीं होता है? तो सीता जी के चरित्र में कोई ऐसी विलक्षणता भी दिखाई देनी चाहिए। क्या विलक्षणता है? सीता जी जनक राज की पुत्री है और पति कौन है? रामचंद्र भगवान है। फिर भी रावण की हिम्मत कैसे हुई कि जो भगवान की अंदर की शक्ति को छू सकता है कोई? रावण तो दुष्ट है, लेकिन वो सीता या भगवान की जो रागिनी शक्ति है उनको पहुंच पाने में रावण समर्थ था क्या कि उठा के ले गया? भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान जैसी होती है, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं कर सकते। तो माया सीता तो उठा गया होगा, भगवान की नजर में सीता माया थोड़ी थी, खुद की रागिनी शक्ति भगवान के लिए माया नहीं, भगवान के आनंद को वर्धन करने वाली है। तो ये रावण उठा जाकर वो भी भगवान को पसंद है क्या? ये आनंद की तो लीला है, लीला में हमेशा आनंद होता है। भगवान के लिए रावण को मारना या सीता के लिए रावण को मारना एक पल का काम है, सिर्फ इच्छा करती तब तुरंत मर ही जाए, लेकिन भगवान को समाज को कुछ बताना है, हम जैसे मूर्ख लोगों को बताना है कि माया सीता की रक्षा करनी चाहिए, भगवान की अंतरंग शक्ति भी स्वतंत्र नहीं बताई है, तो अपनी स्त्री या अपनी जो हम माया पर अधिकार जमाना चाहते उसकी रक्षा कहां करते हैं। दुहितराज विदेह राज दुहितरी शब्द का उपयोग करते समझाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें यह प्राप्त होता है, तात्पर्य यानी कि सत्य का परिचय। अपने जीवन में ये प्राप्त होते कि किसी भी संयोग में चाहे स्त्री कितनी बलवान हो फिर भी उसकी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। यदि स्त्री की रक्षा के प्रबंध में कोई ठिकाना नहीं है तो वो दूषित हो सकती है। तो माया सीता को रावण ले गया और रामचंद्र जी जैसे स्त्री अनुरक्त हो गए ऐसे भटकने लगे। माया सीता को ले जाकर भगवान तो कहते थे मूर्ख अब ये बहाने भी तेरा नाश करेंगे, हमें तो हम आए हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो सत्य का परिचय होते ही धर्म की स्थापना होती है, नहीं तो ये धर्म के नाम पर हम इतने जटिल करेंगे, रामायण करते जाएंगे और कावा भी पीते जाएंगे, ये धर्म में ग्रामी है। तो सही ढंग से समझाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। मंडली में भी ज्यादातर वो लोग सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं क्योंकि गाने रोचक है। ये सुंदरकांड या रामायण का पाठ इंद्रिय तृप्ति के लिए मनोरंजन के लिए बनाया है क्या, या मन को ठिकाने लाने के लिए बनाया है? जब तक अपने मन को गधे की तरफ पिटोगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारी जिंदगी हम बेवकूफी में सिर्फ ऊपर ऊपर की धार्मिकता का पालन करके आंतरिक भावना भगवान कौन है न समझ करके हम चलाते हैं, क्या इससे धर्म की रक्षा हो सकती है? धर्मो रक्षित रक्षक, धर्म की यदि कोई रक्षा है करता है तो उसकी ही रक्षा हो सकती है, क्योंकि धर्म स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान का धर्म स्वतंत्र होता है। हिंदू धर्म स्वतंत्र था कभी? वो तो मनुष्य ने बनाया है। वैदिक धर्म स्वतंत्र है जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, इनका पालन करके हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है तो भगवान स्वतंत्र होने के कारण भगवान के बारे में जो जो सत्य है वो स्वतंत्र सत्य होता है। भगवान की परावर्तित शक्ति यानी कि ये जो दुर्गा माया इत्यादि जो है वो भगवान का कहा करती है, यानी कि वो पराधीन शक्ति भगवान के अधीन। यस्या गया ब्रह्मति संदत काल चक्रो, सारा काल चक्र संसार की जो सारी बातें हैं वो भगवान के अधीन होकर ही चल रही है। हम चाहे लाख रामायण के पाठ करें फिर भी यदि कावा चालू रहता है तो धर्म की रक्षा हम नहीं करते, न तो वो हमारा हमारी रक्षा करेगा। ऐसी मान्यता को हटाकर जो फायदा नहीं करती, ऐसी मान्यता को हटाकर हमें पूर्ण सत्य का पहले स्थापना करनी चाहिए, परिचय करना चाहिए, तब रामायण का पाठ ठीक रहेगा। हमारे पास कई इतनी बहुत सारी मौलात नहीं है, परीक्षित महाराज को दो दो दिन ही बाकी रहे, लेकिन इतने छोटे से संक्षिप्त रामायण करके सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रखर आचार्य विशुद्ध भक्त भगवान का तत्व समझा देते हैं। इस ढंग से जब समुद्र तट पर पहुंचे और भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन का उपवास किया, उन्होंने सोचा कि ये समुद्र आएगा, नहीं आता है तो क्रोध से धनुष और बाण चढ़ा और समुद्र के सारे जल को सुखाने का निश्चय करा। तो इतने ही निश्चय से समुद्र के सारे जलचर अपनी जिंदगी गंवाने के लिए वो विह्वल हो उठे, तो जबरदस्ती से समुद्र के देवता वरुण देव को आना पड़ा। और वरुण देव भगवान की महत्ता जान गए कि ऐसा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं हाँ, जो मुझे आज तक चुनौती देता है, न तो रावण ने चुनौती दी है हाँ। वो कह रहा है भगवान से कि हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं। जब कोई चमत्कार नहीं करता, नमस्कार करने के लिए हम तैयार नहीं है हाँ? सही ना? तो रामचंद्र जी ने चमत्कार बता दिए तो वरुण देव आए। अरे देवता को आना पड़ता है, पर देवता स्वीकार करने के हम मंद बुद्धि के, तो मनुष्य कितना मंद बुद्धि वाला होगा हाँ? हम देवताओं से भी बेहतर है क्या हाँ? हम मंद बुद्धि में बहुत गलतियां कर लेते हैं, अपने आप को कुछ और ही समझते हैं। ऐसा अहंकार तो पल भर में भगवान मिटा सकते हैं। तो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता, पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी तरह जड़ बुद्धि जो है वे भगवान को नहीं समझ पाते, लेकिन तीनों गुणों द्वारा बुरी तरह पिटाई होती है तब वो भगवान को समझने लगते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे तो दुख का है कोई। हमारा दुख का कारण हम, हमारी जड़ बुद्धि, हमारी अज्ञानता, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं बताया। और समुद्र भगवान से प्रार्थना करके कह रहा है कि वो रावण सीता को ले गया है, इसलिए मेरे जल का आप उपयोग करो, आप ऐसा पराक्रम बताओ कि मेरे जल को मैं शांत रखूंगा, आप उस पर पुल बनाकर सवार होकर जाओ। तो रामचंद्र जी को इसीलिए कहता है कि ऐसा अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे कि आप समुद्र में भी पुल बना सकते हैं। कितने किलोमीटर का है, रामचंद्र जी ने सेतु बंद किया था ना, तो सेतु बंद जगह धनुषकोटी में आई है जो रामेश्वरम का भाग है। तो ये जगह में भगवान रामचंद्र जी की महत्ता का पता चलता है। हमें पुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो पानी के अंदर है, लेकिन नासा सैटेलाइट ने इनके पिक्चर लिए हैं, करीबन 11 पिक्चर हैं, उसमें पुल बिल्कुल टूटा हुआ नहीं पता। अभी तो मानना पड़ेगा कि ये तो पुल बनाया उस समय की बात है, 1,75,000 साल पहले बनाया था, क्योंकि उस समय त्रेतायुग था। 1,32,000 साल नहीं सॉरी 4,32,000 साल की बात है, कलयुग चलेगा। अभी तो हमने 5,000 साल भी काटे थे, यानी कि 5,000 साल पहले क्या था, द्वापर युग। और द्वापर युग 170,000 से तो कम है, क्योंकि वो तो 8,64,000 साल का होता है द्वापर युग, कलयुग से 2 गुना, लेकिन त्रेता तो 3 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामचंद्र जिस समय में हो गए
तो
170,000 ईयर्स की बात।
नहीं नहीं
17 लाख, हाँ 17 लाख यानी कि 1,075,000 ईयर्स, सही ऐसा ही हुआ। अरे और गलती है, 1,750,000 ईयर्स। तो नासा ने कबूलात की, तो उस समय मनुष्य की संस्कृति थी, तो ये तो कह रहे हैं कि अभी ही मनुष्य बना और बंदर से बना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वो डार्विन का बाप होगा, बंदर मेरे बाप नहीं थे, है ना। तो भगवान ने जो फूल बनाया इसकी महत्ता बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अरे आकाश में असंख्य ग्रह बिना हवा तैर रहे हैं, तो पानी में पत्थर का करना है। इतने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह यदि आकाश में हवा बिना तैर रहे हैं, तो पानी में एक छोटा सा पत्थर नहीं तैर सकता है क्या। इसमें आश्चर्य व्यक्त करते हैं और ये सत्य को ना समझ करके लोग हमें भरमाते हैं कि ये तो सब मान्यता मान्यता के बच्चे, नासा सैटेलाइट ने तो फोटोग्राफ में बता दिया कि ये मान्यता नहीं कुछ सत्य है, लेकिन तेरा दिमाग जाएगा, जड़ दिया तेरे दिमाग को जरा सफाई करने दो। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जो मंदबुद्धि है, जड़ की है, इसको भगवान का नाम देकर इनकी बुद्धि की सफाई करने की आवश्यकता बताते हैं। ये बंदर बहुत आसानी से भगवान की कृपा से रावण के सैनिकों को मार सके। इनके पास तो सिर्फ क्या था, पर्वत के शुंग थे, बड़े बड़े पत्थर होंगे और नहीं तो पेड़ हिलाकर तोड़ के फेंकते थे। बंदरों की प्यास क्या था, कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसे ही हथियारों द्वारा रावण के सैनिकों को मार दिया। ये भगवान की कृपा है। राक्षस इतने अहंकारी होते हैं कि भगवान के बल को भी चुनौती देते हैं ना समझ होकर, और उसके सामने इनका ये सिद्धांत बनता है कि ये सारा जगत असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर अनिश्वरम ऐसा सोचते हैं। असत्यम ये जगत सत्य नहीं है, मिथ्या कह देते हैं। अरे सत्य का परिचय कराने के लिए तो यहां खड़ा है, नहीं तो क्रिएशन की आवश्यकता क्या हुई। अप्रतिष्ठा, ओ उसकी प्रतिष्ठा यानी कि उसका शासक कोई नहीं है, इसलिए मैं बन जाऊं। मेरे अलावा कोई शासक नहीं हो सकता, रावण इतना मैं ही जो कुछ हूं, क्योंकि उसने भगवान को देखा नहीं, भगवान को समझा नहीं, इसलिए अपने आप को मालिक बना बैठा और भगवान की शक्ति को भगवान बिना उपयोग करना चाहता है। यानी कि जिसके जीवन में भगवान की शक्ति का ही उपयोग हो रहा है और भगवान की स्थापना नहीं हुई है, तो वो भी रावण कहलाता है। रावण का अर्थ ये है कि अपने स्वार्थ के लिए सबको रुलाने वाला रावण, अपनी इंद्रिय तृप्ति की परवाह न, दूसरे का कोई हित नहीं समझता, तो वो रावण है। और सिर्फ भगवान की शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान से बैर कर देता, लेकिन ये शक्ति उसकी हो ही नहीं सकती, निर्बल बन जाता है। चाहे लाखों उपाय उसके पास हो, कुंभकर्ण जैसा कुंभकर्ण भी क्यों ना हो, इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला है वो भी क्यों ना हो इसका बेटा है, बड़े बड़े राक्षस, तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में आकर भगवान ने सबको चपट कर दिया। अब वो रावण से लड़ने आए हैं, भगवान ऐसे लीडर हैं कि सबसे आगे होकर सबको सफाई कर दी। ये रावण ने सबको आगे भेज दिया कि जाओ मरो, मैं आऊंगा, मुझे बचाओ। अब बचने का कोई उपाय नहीं, और घर में तो सिर्फ औरतें ही थी। मंगलोत्री जैसी सती ये उसे टोना मारती है, क्या कि ये रावण को सर्वप्रथम भगवान ने ऐसे डांट मारी उसे कि तुम विष्ठा से भी तुच्छ हो, तुम कुत्ते के समान हो जो घर के मालिक के न होने पर रसोई खाने की वस्तु चुरा लेता है, क्योंकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी को दंड देता है उसी तरह मैं तुझे दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज हो, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा मेरा वार कभी खाली नहीं जाता, कह देते हैं। तो रावण को निशाना बनाकर भगवान रामचंद्र जी ने बाण मारा और गिरा दिया, उसके दसे दस मुख में से लहू निकलने लगा। कहते हैं कि चाहे क्या कोई कौन भी क्यों ना हो, कहां से भी क्यों ना आया, ये रावण तो ब्राह्मण का बेटा था, विश्रवा उसके पिता थे, ये ब्राह्मण का बेटा अभी राक्षस कह रहा है क्योंकि दुष्ट भक्ति है, राक्षस तो कोई भी कुल में पैदा हो सकता है, और जब भक्त होते हैं तो भगवान उसके यहां विशुद्ध भक्त को भेजते हैं या भगवान स्वयं अवतार लेकर आ सकते हैं, भगवान के लिए कोई अशक्य बात नहीं है। लेकिन हमें यह समझना है कि हम यदि दैवी गुण वाले बने तो अवश्य भगवान हमें एक देवता जैसा बेटा भेजेगा, भक्त विशुद्ध भक्त में मिलेगा। इसलिए हर पिता की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मेरा तारण करने वाला हो, नहीं तो मूत्र बराबर है, यूं कह रहे हैं रावण को मूत्र के समान बताते हुए कहते हैं, यानी कि रावण मर गया। उसके बाद सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई, वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के सबों के निकट पहुंची। उन्होंने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर कारुणिक स्वर से रोदन करने लगी जो हर एक व्यक्ति को द्रवित करने वाला था। इतनी सारी स्त्रियां के इतने सारे पति मरे, सब राक्षस थे, रावण के साथीदार थे, तो कितना रोना धोना होगा। लेकिन भगवान वहां परम सत्य के रूप में खड़े थे ना, तो देखो उनके मुख में से क्या निकल रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी ये कह रही है कि हे नाथ हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की मूर्ति थे, अन्यों के लिए तो मुसीबत खड़ी करने वाला था, इसीलिए तो रावण कहलाता था, किंतु जब जब तुम पराजित हो चुके हो तो हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बोलो अभी किसके शरण में जाएगी, यानी कि राक्षसों की तो रही नहीं लंका नगरी, भगवान की शरण में जाएंगी, तो अभी भी स्वीकार मरा हुआ जड़ बुद्धि अभी भी स्वीकार। हे परम सौभाग्यवान, अभी रावण को कहती है कि तू तो बड़ा सौभाग्यवान हुआ, लेकिन तुम काम वासना से वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए। ये राक्षस कुल के हर्ष, देवताओं के हर्ष नहीं है, तुम राक्षस कुल के हर्ष। तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गीधों का आहार तथा अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया। देखो सती, पांच सतियों की बात आती है, इसमें मंदोदरी का नाम है। मंदोदरी जानती है कि भगवान रामचंद्र कौन है और सीता देवी कौन है। रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन काम वासना से अंधा होकर अपनी सती जैसी पत्नी कभी नहीं मानता है तो कितना दुष्ट होगा वो। लेकिन भगवान ने आकर उसके शरीर का नाश किया और आत्मा को नरक में भेज दिया। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जिनके द्वारा कोई भी मर, इनके हाथों द्वारा कोई भी मरता है तो हमेशा वो मुक्ति पाता है, यानी कि वो भगवान उसको अपने अंदर समा लेते हैं, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। लेकिन वो काम चलाव दे देते हैं, उसको फिर से जोग दे देते हैं कि चल तो सेवा करने लग। पहले उसे जोबलेस करते हैं, इसके पास कोई सीधा व्यवसाय नहीं रहता, नौकरी से हटा देते हैं, बाद में फिर से नौकरी में रख देते हैं। तो उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि रावण के भाई तथा रामचंद्र जी के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र ने ऐसे अनुमति प्राप्त हो गई तो अपने परिवार के सदस्यों के नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए और विभीषण द्वारा अग्निदाह सबका हुआ। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने सीता देवी को अशोक वन में शीर्षपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठा पाया। वे राम के वियोग में के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। वो बाहरी बाहरी होता है, भगवान की अंतरंग शक्ति कभी भी दुबली पतली नहीं दिखाई देती। जिसकी इच्छा मात्र से रावण का सत्यानाश हो गया था, वो तो अपने पति परम पुरुष भगवान रामचंद्र की लीला के लिए सहायक बन रही थी। तो अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो पत्नी ने भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख का आलाप झलकने लगा। जो मिलन जैसी बात हो तो काम चलाव ही होता है। भगवान तो अपनी लीला करने आए हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान, पुष्पक विमान में बिठाया और फिर स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। वहां अयोध्या वासियों ने सुना कि भगवान लौट रहे हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम नंदीग्राम में भरत तपस्या कर रहा था, भगवान रामचंद्र जी खड़ाव लेकर
वो भी शामिल होकर आया भगवान को मिलने के लिए।
अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी ने सुना कि उसकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ को खाता था, अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए पुरुषों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। भगवान रामचंद्र जी के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी की आंखों में आंसू भर कर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को दीर्घकाल तक आलिंगन करते रहे और उन्हें अपने आंसुओं से नहलाया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजन को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भी भगवान को सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने भाई भरत के द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नियों एवं अपनी माता कौशल्या इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को तथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनके कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता जी ने ऐसा किया। इस प्रकार सभी महल में प्रवेश हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत खड़ी उठी, मानो निश्चित शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्होंने आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विछोह के संताप से छुटकारा पा लिया। गुरुगुरु या गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र जी के सिर की जटाएं मुड़वा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्र के जल तथा अग्नि सामग्रियां इत्यादियों द्वारा भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक किया, उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का भी अभिषेक हुआ था। तो ये रामचंद्र जी के आगत स्वागत की तैयारी, उनको पुनः राजगद्दी पर बिठा दिया। तो जब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र जी ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा के रक्षक पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपूर्व कार्य में उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। राजा पिता तुल्य होता है, वो वर्णाश्रम धर्म को वहन करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए राजा भी राजर्षि कहलाता है, ऋषि जैसा है। वर्णाश्रम धर्म की एक ही महत्ता है कि अपने अपने वृत्तिपूर्वक कार्य संपन्न करके भगवान की प्रति प्राप्त करने का जो उद्देश्य रखते हैं तो वो उद्देश्य राजा को शिरोधार्य होता है। तब वो भी स्वयं अपने अपने वृत्तिपूर्वक कार्य का पालन करके वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान का प्रतिनिधि बनकर सारे राज्यों को भगवान को समझने की सुविधा देता है। इसीलिए राजा के कुलगुरु इत्यादि जो होते थे तो सबके कुलगुरु कहलाते थे। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु इनकी सरकार अच्छी होने के से वह सत्ययुग जैसी थी। एक कलयुग में राम राज्य की अपेक्षा करते हैं, लेकिन न तो रामचंद्र जी का को सत्य रूप से जानते हैं न तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसी इच्छा रखने से राम राज्य क्या खड़ा हो जाएगा यहां? लेकिन संभावना, यदि चेतना की जागृति होती है, इन तत्व को समझने में जिनकी जड़ बुद्धि हट जाती है, तो अवश्य उसके भवबंधन का छुटकारा हो जाता है। जीते जी मरने की कोई आवश्यकता नहीं बताई कि भवबंधन काटना तो मरना पड़ेगा पहले, नहीं नहीं, भवबंधन काटना यानी कि हमारी झूठी मान्यताओं से मुक्त हो और अपने सच्चे कर्तव्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वृत्तिपूर्वक कार्य करना है वो संपादन करना। तो राम राज्य, कलयुग में राम राज्य लाना हो तो सर्वप्रथम क्या सफाई होनी चाहिए? जड़ बुद्धि की सफाई होनी चाहिए। वो किससे होगी? हरे कृष्णा महामंत्र से बोलो, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे
हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जड़ बुद्धि है वही नहीं बोलेगा, लेकिन वो भी पिघल जाएगा यदि भगवान का नाम सुनता है ध्यान पूर्वक और दिल में उतर जाता है तो अवश्य वो जड़ बुद्धि भी नहीं रहेगा, ये गारंटी है। भगवान रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत ले रखा था और उनका संबंध किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम तथा क्रोध उन्हें छू ही नहीं सकता था। उन्होंने हरेक को विशेषतः गृहस्थ को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचार का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपनी निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी और उसी तरह सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालु तथा सती थी और अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। भगवान की शक्ति भगवान की इच्छा को जानती है, फिर भी आदर्श बताने के लिए हमने सतीत्व बताया। रामचंद्र जी भी अपनी पत्नी यानी कि अपनी अंतरंग शक्ति से अभिन्न हो सकते हैं, उनका पूर्ण रूप तो सीता देवी थी। और राजा होने के बावजूद भी एक पत्नी व्रत धारण करके मनुष्य को पाठ पढ़ाया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर आप भगवान के प्रति अनुरक्त हो और हर एक परिवार के सदस्यों को भगवान की अनुरक्ति देने में सफल हो। यज्ञाचरती श्रेष्ठ तत्ते विदर्वधन स यज्ञ प्रमाणम गुरुते लोकार्थ धनु अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श बनकर ये भागवत धर्म का पालन करते अपने ही उदाहरण द्वारा लोगों को समझाने में सफल बनते हैं, सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे कहे का अनुसरण करता है उसको उसी प्रमाण में उसके अनुसार मैं प्रति साथ देता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते संस्कृते उपजाते हैं। तो भगवान जिस तरह सिखाते हैं उस तरह हमें सीखने और जीने की आदत बनानी चाहिए, तब हम भगवान को प्रियता प्राप्त करेंगे और भगवान के पास जाने के लिए सक्षम बनेंगे। अभी राजा होकर भगवान रामचंद्र विश्व के राजा बनते हैं, तो आदर्शता में राजा आचार्यों गुरुजनों इत्यादि को आगे बढ़ाकर कहते हैं आचार्य स्वयं भगवान। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने आचार्य बनाकर बड़े धूमधाम से यज्ञ संपादित करे, इस तरह उन्होंने स्वयं अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। देखो भगवान भी अपनी पूजा करता है, आचार्य को स्थापित किया और उसके माध्यम में यज्ञ संपादन करना है। यज्ञ में जो अग्नि है साक्षात भगवान का स्वरूप कहते हैं, और भगवान यज्ञ संपादित करते हैं तो भगवान अपनी पूजा करते हैं। रूपरा हिंसा, कोई व्यक्ति अपने को भगवान बनाकर अपनी पूजा कर सकता है? यज्ञ संपादित कर सकता है? चलो मैं अपनी सर्वोच्च स्थिति पर यज्ञ करूं, मैं भगवान, मैं अपने का आह्वान करूं। वो एक बाबा है ना कर्नाटक में, वो अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन अभी तो व्हील चेयर में बैठकर यज्ञ संपादन करना पड़ता है। तो ये कौन सा भगवान है? भगवान स्वयं अपनी पूजा करें तो हमें किस तरह समझना चाहिए? प्रभुपाद समझाते हैं, देखो सर्वारणम अच्युत तेज्या, यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हरेक की पूजा हो जाती है। तो भगवान ने इसी कारण से सबों की पूजा करने के लिए स्वयं की पूजा की। श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा गया है कि यथा तरोर मूल निश्चयेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्रारोपणाश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणम् अच्युत तेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना डाले पत्तियों को जीवनदान मिलता है, उसी तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं। उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूपी देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना, और जब भगवान ही भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं तो इसमें सब्जियों की पूजा आ जाएगी, नहीं तो वो स्वार्थी अपने आप को अपने भगवान बनाकर समझकर अपनी पूजा करता है, तो न तो भगवान की पूजा होगी न दूसरों की पूजा। अभी यज्ञ संपादन करने के बाद भगवान रामचंद्र जी ने होता को संपूर्ण पूर्व दिशा दे दी, ब्रह्मा को संपूर्ण दक्षिण दिशा दे दी, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा दे दी और सामवेद के गाय उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य दे डाला दूसरों के पास, जा आप चलो। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतः एवं उन्होंने ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए। देखो भगवान रामचंद्र जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी, ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र जी के पास उनके निज वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे। इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा, सारा दे दिए। विरक्ति बताते हैं भगवान सब त्यागवान है। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र जी से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। देखो रामचंद्र रामराज्य कैसे चला सकते हैं, संचालन कैसे कर सकते हैं बिना अनुरक्ति, भौतिक चीजों से भौतिक सृष्टि सारी दूसरों को दे दी। और इनको संचालन करने को दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रहा, यानी कि कंप्लीट डिटेचमेंट। भगवान रामचंद्र त्याग मूर्ति थे और सीता ने भी सहयोग दिया। तो ब्राह्मण लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए भगवान पर, क्योंकि वे ब्राह्मणों प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मणिताय, जगत हिताय, कृष्णाय, गोविंदाय। तो अतः उन्होंने द्रवित होकर ये ब्राह्मण लोग को जो जो दान में प्राप्त सारी संपत्ति जो थी तो भगवान को लौटा दी, और उस प्रकार बोले, देखो ब्राह्मण लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया? आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अंधकार को दूर किया, यही सबसे बड़ा उपहार है। हम भौतिक दान की हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं। हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों ने आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य दे स्वीकार किया। आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं हो। आप इस संसार के विख्यात पुरुषों में प्रमुख हैं और आपके चरण कमलों की पूजा अदरणीय मुनियों द्वारा की जाती है, पवित्र मुनियों द्वारा की जाती है। हे रामचंद्र, आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। ऐसा राम राज्य था। अब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का क्या अभिमत है जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। वह व्यक्ति अपनी कुर्ता पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतः अब तुम कुर्ता तथा दूषित हो, अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूं, अतएव मैं तुम्हें फिर नहीं रख सकता। देखो, मिथ्या अनुकरण, भगवान के कार्यकलापों की दिव्यता न जानकर हम कैसा व्यवहार, खुद कुटिल है लेकिन पत्नी को कुटिल करके दूसरी पत्नी बनाना चाहता। यदि कोई दैवी पुरुष है तो पत्नी इसकी संरक्षण में होती है, वह संरक्षण हमेशा उसे मिलता रहता है, क्योंकि पति दैवी देवी गुण वाला। लेकिन पति ही यदि कुर्ता हो तो स्त्री भी दूषित हो सकती है, और उसे कुर्ता कहकर मैं अभी तेरा भार नहीं वहन करूंगा क्योंकि मुझे दूसरी चाहिए। रामचंद्र जी जैसे रामचंद्री वो अपनी पत्नी को रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। देखो कितना दूषण घुसपैठता है। तो रामचंद्र जी ने ये सुना, परम सत्य में कोई कलंक नहीं होता, परम सत्य निष्कलंक होता है। ऐसे छोटे कलंक एक मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति अपने राज्य में हो तो भगवान के मेरा कार्य संपन्न हो गया, अब मैं किसी न किसी बहाने यहां से विदाई ले। क्योंकि त्रेता युग के बाद वापस आएगा, यानी कि और दूषित होगा युग, धर्म के दो टांग तो कटी है, एक और कटेगी। त्रेता युग में दो कटती है, सत्ययुग में एक कटती है, त्रेता में दो और द्वापर में तीन कटती है और चौथी भी कलयुग में कटती है क्योंकि धर्म का नाश हो रहा। चार युगों में एक एक काम कटी है ऐसा बताया। तो रामचंद्र जी ने ऐसी छोटी सी बात लेकिन अपने सच्चरित्र परम सत्य का चरित्र को ना समझ करके किसी व्यक्ति धूर्त व्यक्ति अपनी पत्नी को उल्टा कहकर उसको डांटता है और उसका त्याग करने की बात करता है। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो हमें जो इन मतियों को सुधारने के लिए जो आवश्यक कर्तव्य करना है इसके पीछे जुड़ जाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अल्पज्ञ तथा गणित चरित्र वाले व्यक्ति ने अंत शंट बकते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत शंट बकते रहते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। लेकिन धूर्त चरित्र अल्पज्ञ होता है, वो गणित होता है, ऐसे धूर्तों के भय से देखो। अरे भगवान को तो कोई भय होता है, फिर भी लीला में एक और लीला बाकी है। तो ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का तब परित्याग किया जब वे गर्भिणी थी। इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के साथ के आश्रम में गई। और रामचंद्र जी ने किसी के कहने पर ऐसा कर दिया, हम तो नहीं करते, तो दूसरा धूर्त व्यक्ति होता है। ये हमारी समझ में नहीं आता कि रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया। हम तो सज्जन हैं, हम तो अपनी पत्नी को बचाकर बैठते हैं। अरे लेकिन भगवान का सच्चरित्र के बारे में ये अल्पज्ञ व्यक्ति क्या जानता है। चाहे सद्गुणी जैसा व्यवहार करता है लेकिन अहंकार की तरह, चलो कोई दुर्गुणी है, दुर्गुणी में अहंकार तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सही ना। लेकिन सद्गुणी में भी अहंकार होता है क्योंकि भौतिक आसक्ति के कारण अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा होगा, लेकिन क्या उनका जीवन आध्यात्मिक है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति सद्गुणी भी हो सकते हैं, दिखावा हो सकता है, लेकिन भगवान के सच्चरित्र को समझने में उसकी ताकत नहीं। इसीलिए प्रश्न करता है, हैं महाराज जी जरा बताओ तो सही, एक धूर्त व्यक्ति तो ऐसा अंतर्संत पक सकता है लेकिन हम कैसे कह सकते, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो सद्वृत्ति से भी भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन सत्य क्या है वो समझने की वृत्ति रखो। सत्य परम सत्य होता है, परम सत्य भगवान स्वयं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, इन पर एक कलंक भी नहीं रह सकता, वो निष्कलंक होते हैं हमेशा। लेकिन जब सद्वृत्ति वाला मनुष्य ऐसा प्रश्न करके वो देहात्म भाव से छूटता नहीं है, तब प्रश्न करता है कि हमारी समझ में नहीं आया, जरा समझाओ तो सही। विनम्रता से प्रश्न करेगा तो उसको कहना पड़ेगा, भैया भौतिक सत्वगुण का व्यवहार भी हमें भवबंधन से मुक्त नहीं करता। जो सद्गुणी व्यक्ति है उसे ये समझना चाहिए कि भौतिक सत्व के भगवान नहीं बने। सत्व होना हमारे लिए आदर्श और मर्यादा की रक्षा के लिए दिया है, लेकिन उस पर हटकर सद्गुण से हटकर परसत्व यानी कि अध्यात्म में हमें सोचना चाहिए, अध्यात्म में सोचना चाहिए। रामचंद्र जी के बारे में वो फिर से हम अपने जैसे सद्वृत्ति वाले थे, हमें आदर्श है कर
भगवान की दिव्यता को समझने के लिए यदि तैयार नहीं है तो उसके मन में ये शंका बनी रहेगी और वो ना समझ बन रहे। भगवान ये त्रिगुणातीत है, सत्व गुणों से भी परे हैं, तो देखो उसे ये अनुशासित होने की आवश्यकता है। जब भगवान गुरु बनाते हैं स्वयं, तो हमें भी गुरु बनाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। गुरु कौन होता है? जो परम सत्य का जानकार, तो भौतिक सत्य का जानकार के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। भौतिक सद्गुणी बनना इतना काफी है मेरे लिए, मैं किसी का किसी के लिए झूठ न बोलूं, मैं किसी को परेशान नहीं करूं, मैं किसी की चोरी नहीं करूं इत्यादि। जो सद्गुण हो वो तो नैतिक गुण है, वो सत्व में बनाए रखते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन परसत्व की बात करो, परसत्व यानी कि सत्य से भी परे। देखो ब्रह्मा जी ये शिक्षा देते हैं कि ये तो माया का सत्व गुण, सत्व गुण माया का अंश। माया तीन गुणों से सारी सृष्टि का संचालन करती है। माया ही यस्य जगदंग सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेदिताय माना सत्वावलंबी। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है, शिव जी तमोगुण के अवतार है। ये दोनों को भौतिक गुण सताते हैं और गलती कर बैठते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सत्वगुण भी नहीं सताता। चाहे सत्वगुण का संचालन वो बहुत आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन छूते नहीं उनको, तीन गुणों छूते नहीं। इसलिए भगवान का जो ये तत्व यानी कि परम सत्य है वो त्रिगुणातीत, तीन गुणों से परे है। वो सच्चिदानंद विग्रह कहलाते हैं। सत यानी हमेश की जिसकी हयाती है वो सत्य, वो परम सत्य कहलाता है। सत्य और परम सत्य में तो भेद है ही। जो परम सत्य है वो हमेशा विजयी होता है। लेकिन भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं कि एक धूर्त व्यक्ति यानी कि सत्वगुणी भी नहीं है। ऐसा रामचंद्र जी के चरित्र, सीता जी के चरित्र पर कलंक लगाता है। ये स्वयं रामचंद्र जी अपने मत्थे पर जिम्मेदारी ले लेते हैं, परम सत्य अपने मत्थे पर दूसरे धूर्त द्वारा लगाए हुए एक मामूली बात। ये कलयुग में तो ये मामूली बात है, सब एक दूसरे के धूर्त समझते हैं। हम कितने धूर्त हैं आप समझते हैं, और आप कितने धूर्त हैं हम समझते हैं। एक पति और एक पत्नी, सारा व्यवहार तीन गुणों में फंस कर धूर्तता, धूर्त यानी चीटिंग। सत्वगुण भी चीट करता है, रजोगुण भी चीट करता है, और तमोगुण भी चीट करता है। इसीलिए इन तीनों गुणों के माध्यम से जब हमारा शरीर बनता है तो वो गलती करता है, वो अपूर्ण इंद्रिय द्वारा पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा वो माया के बंधन में फंस सकता है, और चौथा झूठ बोलना। ये चारे चार क्षतियों ये तीन गुण के प्रभाव से बनी रहती है। यूं देखे तो राक्षस लोग को भी अपना जीवन का स्टैंडर्ड होता है, देवताओं को भी जीवन का स्टैंडर्ड होता है। देवताओं के जीवन पर राक्षस बहुत ईर्ष्या करते हैं, इसलिए देवताओं पर चढ़ाई करने आते हैं और कभी कभी जीत लेते हैं। और देवताओं अपनी जो जो जीवन स्टैंडर्ड की शैली है, ऊंचे प्रकार का व्यवहार है, चाहे भगवान के नाम पर भी क्यों न करते हैं, फिर भी भौतिकता से देवता भी नहीं छूटते। लेकिन महादेव ब्रह्मा इत्यादि के हाथ में हमेशा माला होती है भौतिकता से छूटने के लिए, तो सत्वगुण से भी परे बन सकते हैं। हम भवबंधन काटे कैसे बिना सत्वगुण को ऊपर चढ़े? नहीं काट सकते। तो यहां ये स्पष्ट बात
समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें मिलता है कि ये मामूली बात नहीं है। भगवान सर्व कारण कारण होते हैं, इसलिए यदि कोई कलम का कारण कहता है तो वो अपने मत्थे पर वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वो परम सत्य है वो साबित करने के लिए सीधा चलो चली जाओ आदेश देते हैं। और घर भी नहीं थी, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्होंने जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया, बाद में उनको सौंप कर वशिष्ठ मुनि को ही सौंप कर वो धरती में समा गए। भगवान की अंतरंग शक्ति जहां से पैदा हुई थी वहां चली गई और भगवान की अर्धांगिनी पृथ्वी भी है, भूदेवी कहते हैं उसे, वो लक्ष्मी का रूप है। बहुरत्ना वसुंधरा, धरती माता सारे ऐश्वर्यों की माता, सब ऐश्वर्य मिलते हैं। और ऐसे ऐश्वर्य जिसमें देवताओं भी आते थे लेने के लिए, कलयुग में नहीं आते। कर्मों का जो भोग होता है, जब यज्ञ में आहुति रूप में देवताओं को भी बुलाना पड़ता था, लेकिन इस युग में हरिनाम संकीर्तन के अलावा दूसरा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि धरती माता ने इतना संग्रह नहीं रखा है। कलयुग बहुत नपावट युग है, तो उसमें ब्रह्मा जी हमें कहते हैं कि देखो, हमें यदि सत्व गुण से भी ऊपर उठना है और अपने आत्मा के गुण में आना है तो सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान विशुद्ध सत्व है, आत्मा उनकी अंश होने के कारण परसत्व है, क्योंकि वो फंसी है सत्व रज और तमोगुण के शरीर, इसलिए हमें ऊपर उठने की आवश्यकता बताते हैं। तो एक धोबी के इतने छोटे अंतशंत बात पर रामचंद्र जी ने पूर्ण जिम्मेदारी ली और सीता को आज्ञा की कि चली जाए। रोना धोना तो ऊपर की बात है, अंदर की बात तो विरह की वेदना, जिसके द्वारा भगवान अपनी शक्ति से कभी भी छोड़ नहीं सकते। यदि वृंदावन की लीला में भी आप देखोगे तो सर्वश्रेष्ठ लीला या सर्वश्रेष्ठ सेवा गोपियों की बताई है, जो विरह की वेदना में अनुभव कर सकती है। हम भौतिकता में ऐसे फंसे हैं कि एक तो भगवान के नाम की आवश्यकता है कि नहीं हमारे जीवन में, वो भी नहीं समझते। इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम पशुवत जीते हैं, धर्म का तो सिर्फ दिखावा है, लेकिन हमें जो आवश्यक रूप से अपने आत्मा को अपने आत्मा की विशुद्धता के स्तर पर लाने की ये जिम्मेदारी या मौका हमें ये मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है, उसका सदुपयोग न करके हम अंतशंत बातें करते हैं कि देखो ने रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, ये क्या आवश्यकता थी हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन भगवान रामचंद्र सत्वगुण के लौंदे थोड़े थे, वो तो विशुद्ध सत्व है। तो हमें ये जानना है कि भगवान अपनी लीला करने में कितने स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो विशुद्धि क्या है वो बताना चाहते हैं। और सीता के माध्यम पर सीता को कोष कर सीता को कहते हैं कि चली जाए, घर के बाहर निकल। एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है सीता को जो दुख हुआ तो हम भौतिकता से बता सकते हैं कि कितना दुख होता है। अरे कथाकार रोता है और दूसरों को रुलाता है, ये भौतिकता का परिचय देखो।
ऐसा नहीं कि भगवान के प्रेम के लिए जो अश्रु सात्विक भाव इत्यादि जो निकलने चाह रहे वो नहीं निकलता, ये तो सिर्फ कमाई के लिए विरह की जब बातें होती हैं तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं दूसरों सारे श्रोताजनों को, बाद में सब खत्म होती है ना कथा, बहुत अच्छी कथा, अरे क्या रुलाया, क्या मजा आ गई, रुलाने से मजा आती है। तो रो सारी जिंदगी भगवान के विरह में। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कैसे रोना, चैतन्य महाप्रभु ने ये विरह क्या है, नयनं गलदश्रुधारया वदनं गगदर्भया गिरा पुलकैनिचितं बहू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपका नाम लेकर भी मेरी आंखों से कब अश्रु पड़ेंगे, मेरी वाणी कब गदगद हो जाएगी, मेरे शरीर के रोमांच कब खड़े होंगे आपके नाम लेकर, क्योंकि आप तो है ही, आपके नाम के अलावा मेरे पास है ही क्या। तो प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं ऐसे दुर्द रोते हुए रुलाने वाले कथाकार के पास मत जाना, वो भ्रमण में रखेंगे। और भगवान के सामने रोना इसलिए अपराध होता है, कभी रोना नहीं। नाटक में यदि रो लेते हैं तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में रोना ठीक नहीं। भगवान नाटक करते हैं, स्त्री अनुरक्त जैसे बनते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता कैसी, नहीं तो कैसे ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो सीता को वनवास देना फिर से वो भी बड़ा नाटक है, बड़ी लीला है, तो मामूली लीला नहीं। समझने के लिए हमें तीन गुणों से ऊपर उठना है। तीन गुणों की सफाई सिर्फ हरिनाम द्वारा ही हो सकती है, अन्य कोई भी कर्तव्य द्वारा नहीं हो सकती। इसलिए बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और तैयारी रखना कि आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्मं हतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु दंपत मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। चेतन महाप्रभु की अंतिम शिक्षा ये कि भगवान आप मुझे हरिमन दो या नहीं दो, या लात मार करके मुझे भगा दो, पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनार्थ मुझे दर्शन भी नहीं दो, मर्मां हतां करोतु वा मेरे हृदय का भी चुरा चुरा क्यों न करो, यथा तथा आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हो, ऐसी तैयारी रखने के लिए चेतन महाप्रभु कहते हैं। क्यों मत प्रमाण नाकुस्तु से एवना पड़ा, आप किसी भी दशा में सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्रता का पर मैं दबाव नहीं कर सकता, जो स्वतंत्र है तो मेरी क्या हिम्मत, यानी कि आप इन सब चीज करने में स्वतंत्र हो, यानी कि यथा तथा वा विदधा तो लंपट, लंपट यानी मनमोजी, लंपट यानी मनमोजी, अपनी इच्छा में आए वही करें, आप जैसे हैं वैसे लंपट हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरे प्राणनाथ ने शरीर ना पर उसके अधिक मुझे कह, ये तैयारी जो रख सकता है वही भगवान के पास पहुंचने के लिए लायक होता है।
तो भक्ति ही परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। हमारी सारी जड़ मान्यताओं या सात्विक राजसिक और तामसिक मान्यताओं को भी त्याग करने की आवश्यकता बताई है। तो विरक्ति अन्यत्र ऐसी विरक्ति आते ही परेश का अनुभव हो सकता है। इसीलिए भगवान की भक्ति में अहितु की ज्ञान और वैराग्य दो पैदा हो तो भक्ति सही, नहीं तो किस्सा कुर्सी का। सही, वी आर स्टिकिंग टू अवर ओन गन्स। आई एम समबडी, आई एम लाइक दिस, नोबडी बेटर देन मी। हाँ, बहुत भारी है क्या भक्ति करना, इतना आसान है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ भगवान के नाम की शक्ति का ऐसा परिचय करने का मौका मिलता है तो हम पीछे क्यों, हम यदि कंजूस हैं तभी ही कुछ गड़बड़ी करेंगे, नहीं तो नहीं। भगवान आपको क्या करना है, शरीर के हजार टुकड़े भी क्यों न कर दे, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कितना समय है, अरे चलो मैं खत्म नहीं करता हूं। तो समय होने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए हैं। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ। हे महाराज परीक्षित, उसके बाद लक्ष्मण को भी दो पुत्र हुए हैं जिसका नाम अंगद और चित्रकेतु थे। भरत के भी दो पुत्र हुए जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। और शत्रुघ्न के सुबाहु तथा सूत्रसेन नाम के दो पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्होंने करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा। जो सामान्य कपटी थे इन्होंने सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान रामचंद्र जी को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुवन नामक जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। यह मथुरा किसने बनाया, देखो मधु राक्षस का पुत्र लवण, यानी कि ये शत्रुघ्न ने मथुरा राज्य की स्थापना की, मधुबन नामक जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्र को वाल्मीकि की देखरेख में छोड़ दिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में दोनों पले थे। हमने क्या वशिष्ठ मुनि की बात की, नहीं वाल्मीकि मुनि। तो तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए। बिछड़ी हुई भी अपने पति पर कोई शंका नहीं करती, बल्कि अपने आराध्य देव भगवान पर और ज्यादा गहराई से वो उनके चरण का मुख को चिपकती है। आज शाम को कुछ आगे कई बातें समझने के लिए बोलेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, बस चुप, चुप भी ठीक नहीं है, इसलिए चलो कीर्तन करें। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।
प्रेमराज के जय।